श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री रूपमंजरी ब्रज गोपिका के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है। उन्हीं के चरण ही मेरी वास्तविक संपदा है, वही मेरा भजन व पूजन है, वही मेरे प्राणधन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है, वही मेरी रसनिधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है, वो मेरे लिए वेद का धर्म है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म तथा कर्म है। उन चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होंगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दो नयनों में वास्तव में देख पाऊंगा। श्री रूपमंजरी के चरणों के रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहूंगा। चंद्र जैसी दिन रात चमकेगी जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा। तुम्हारे विरह के सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल शापित है। हे रूपमंजरी, दया करके मुझे अपनी पदछाया प्रदान करो। नरोत्तम दास ठाकुर तुम्हारी शरण लेता है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के आज तिरुभाव तिथि है और श्रील गौरीदास पंडित प्रभु की तिरुभाव तिथि। तो गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप में रूपानुग वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं रूप गोस्वामी के अनुयायी। प्रत्येक दिन आप मंगलाचरण पढ़ते हैं अज्ञान अतिमिरांधस्य कहने के बाद, फिर किसको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले रूप गोस्वामी को प्रणाम की जाती है, हैं? श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्ट को ठीक ठीक से समझने वाले व्यक्ति कौन है? रूप गोस्वामी। केवल समझे नहीं, पूरे विश्व में उसी को प्रचार करने में जिनकी मुख्य भूमिका है वो है श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने युक्त वैराग्य की जो दर्शन को स्थापना किए, अर्थात सभी कुछ किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना, इस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। ये प्रणाम मंत्र कहाँ से ली गई? प्रत्येक दिन हम जो प्रणाम करते हैं, रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा, स्वयं रूप अर्थात जो स्वयं रूपमंजरी है राधा कृष्ण की लीला में, जैसे गौरकर्ण दीपिका में कवि कर्णपुर ठाकुर कहते कि श्री रूप मंजरी ख्याता यासित वृंदावने पुरा सद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटितम यात। जो राधा कृष्ण की प्रकट लीला में ललिता सखी की मुख्य सहायक कारिणी के रूप में अब मुख्य मंजरियों की नेता के रूप में बलिडर के रूप में जो रूप मंजरी भाग ली थी राधा कृष्ण की लीला में, वही गौरांग महाप्रभु लीला में किस रूप में प्रकट हुए? रूप गोस्वामी बा रूप मंजरी, वही रूप मंजरी स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। उनके नाम रूप कौन रखा? चैतन्य महाप्रभु ने इनके स्वरूपगत नाम प्रदान किए, जो स्वयं रूप मंजरी, इसको प्रमाणित करने के लिए गौरांग महाप्रभु स्वयं उनके नाम रखा रूप। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव की जो विचारधारा उन्हीं से ही प्रारंभ हुई है, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी के अवतार हैं, और उनके बाद में रूप मंजरी स्वयं रूप गोस्वामी। तो ये प्रणाम मंत्र नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका से द्वितीय श्लोक है। प्रेम भक्ति चंद्रिका कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर। तो उसी प्रणाम मंत्र को हम प्रत्येक दिन दोहराते हैं। और भी एक प्रणाम मंत्र, आप जो रूप गोस्वामी के भजन कुटीर में जाओगे राधा दामोदर में, वहां दो प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी के लिखा हुआ है, ये एक और एक प्रणाम मंत्र भी वहां पर लिखा गया। अददान त्रिनंग दंतैर एवं जाचे पुनः पुनः श्रीमत रूप पदाम्भुजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनी। ये प्रणाम मंत्र रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गई है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि प्रयोजनाचार्य के रूप में जाने जाते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जैसे तीन तत्व आप जानते हैं, संबंध विधेय प्रयोजन, प्रयोजन तत्व के आचार्य के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी को। अददान तिणंग दंतई एवं जाचे में दांत में तीन के टुकड़ा अर्थात घास को धारण करते हुए नम्रता से बार बार प्रणाम करता हूं, किनको? श्रील रूप गोस्वामी को। एवं जा और बार बार यही जाचना करता हूं, मेरे जीवन की एकमात्र यही कामना है, क्या कामना है? धूलिश्याम जन्म जन्म, श्रीमद रूप पादाम्भुजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनी। जन्म जन्मांतर में से श्रीपाद रूप मंजरी या रूप गोस्वामी के चरण में एक धूल के कण बनकर रहूं। कौन ये इच्छा प्रकट करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए रूपानुगम वैष्णव के लिए आज विशेष दिन है, जो कि रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी गौरांग महाप्रभु की लीला में श्री गौरांग महाप्रभु की मनोअभिष्ट को धरा पर स्थापना किए हैं, जिनकी प्रेरणा से श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जाकर ये गौड़ीय सिद्धांत को गीता भागवत की प्रचार किए। इनको कौन प्रेरणा दिया प्रचार के लिए? श्रील प्रभुपाद जी को कौन प्रेरणा दिया प्रचार के लिए? वो आदेश दिए, प्रेरणा कहां से मिला? कहां पर रहते थे प्रभुपाद जी ने? राधा दामोदर में रूप गोस्वामी के समाधि के पास बाजू में देखें उनको भजन, जहां पर आओ जी किचन, प्रभुपाद जी किचन, वहीं से बैठकर प्रभुपाद जी ने प्रत्येक दिन ध्यान करते थे। किनको? रूप गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी इनको साक्षात भी दर्शन दिए। किनको? श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद इसको स्वीकार भी किए। प्रभुपाद जी ने जो वृंदावन में आए अपने शिष्यों के साथ में और राधा दामोदर में गए और कई जगह भ्रमण किए, तो किसी गोस्वामी ने कहे कि तुम जानते हो तुम्हारा गुरु महाराज जो है ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इनको रूप गोस्वामी साक्षात दर्शन दिए और साक्षात दर्शन देकर इनको आदेश दिए प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में जाकर। तो सब शिष्य लोग ने विशेषकर हरिश्री हरिश्री प्रभु जो उनके सर्वेंट थे उस समय, उन्होंने प्रभुपाद जी को बार बार पूछे कि प्रभुपाद ऐसा ही यहाँ का जो गोस्वामी लोग ने बोलते हैं कि आपको रूप गोस्वामी ने साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने प्रेरणा दिया प्रचार के लिए। बार बार प्रचारने पर प्रभुपाद ने बाद में कहे व्हाट इज न्यू, एवरीथिंग नोज अबाउट इट, बोले इसमें कौन नया बात है, इसको सब लोग जानते हैं। तो प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि रूप गोस्वामी ने साक्षात दर्शन देकर प्रभुपाद जी को प्रेरणा दिए थे किसके लिए, पाश्चात्य जगत में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्ट को स्थापन करने के लिए, प्रचार इसी को विशेष रूप में गीता भागवत के सिद्धांत को प्रचार करने के लिए। और उन्हीं की प्रेरणा से ही प्रभुपाद जी ने सारा विश्व में ये जो गीता और भागवत की वाणी को व चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार किए। तो रूप गोस्वामी के बारे में आविर्भाव तिरोभाव में बार बार आप उनके जीवन के बारे में श्रवण करके आ रहे हैं, रूप गोस्वामी है माने इसी प्रकट लीला में इनके शरीर जिनको आश्रय करके उन्होंने उनकी जन्म हुआ था वो कौन थे, कुमार देव और रेवती। इनकी वंश परंपरा प्रकृत में ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए थे, भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे कर्नाटक से। मूल रूप में इन्होंने दक्षिण भारत में निवास करते, इनके पूर्वज दक्षिण भारत में रहते थे कर्नाटक में, सर्वज्ञ नाम के एक ब्राह्मण थे जो कि वो कर्नाटक के राजा भी थे साथ साथ ब्राह्मण भी, जन्मगत ब्राह्मण थे लेकिन वो राजा भी थे कर्नाटक प्रदेश से। उन्हीं की परंपरा से सर्वज्ञ के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से रूपेश्वर, पद्मनाभ, मुकुंद, मुकुंद से कुमारदेव आए, कुमारदेव के पांच पुत्र और एक पुत्री थी। पांच पुत्र में से तीनों विशेष रूप में प्रसिद्ध थे, अमर, संतोष और तो तीसरे कौन, वल्लभ। तीनों प्रसिद्ध क्योंकि तीनों गौरांग महाप्रभु की आश्रय लिए थे। तो इनके नाम पिता माता इस प्रकार रखे थे, अमर, संतोष और वल्लभ। बाद में गौरांग महाप्रभु इनके नाम बदल दिए, गौरांग महाप्रभु इनके नाम बदल नहीं, इसके बाद हुसैन शाह इनके नाम बदल दिया था। हुसैन शाह जो कि बंग के नवाब थे, उनके राज्य को परिचालना करने के लिए इन्होंने किसी योग्य व्यक्ति को चाहते थे क्योंकि वो तो हमेशा दिग्विजय में लगा रहते थे, राज्य विजय में अन्य अन्य राज्य को आक्रमण करके उनको विजय करने में उसी में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, साम्राज्य को प्रतिष्ठित करने में। लेकिन साम्राज्य को चलाने के लिए, इसके प्रजाओं को पालन करने के लिए इनको कोई योग्य व्यक्ति जरूरत था। तो उनके पास में एक विशेष ज्योतिष मुल्ला रहता था, बहुत बड़े भविष्य ज्ञान था। तो इन्होंने गणना करके एक बार बताया कि देखो ये बंग प्रदेश में बंगाल दो व्यक्ति रहते हैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए हैं, वो है अमर और संतोष, उनके और भी छोटा भाई वल्लभ है। यदि आप ये तीनों को लाकर अपने राज्य में आपके सेवा में लगा लोगे मिनिस्टर पद में तो आपकी राजा आपकी राज्य अपने आप शांति श्रृंखला को प्राप्त करेगा, प्रजा बड़ा सुखी रहेंगे और आप भी दिग्विजय करते करते राज्य को और बढ़ाते जाओगे। ये दोनों के विशेष रूप में अमर और संतोष की जो गुणावली को वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो अपने जो परामर्शदाता से मुल्ला से ऐसे ही सुनकर हुसैन शाह ने प्रयास किए दोनों को अपना अनुगत बनाने के लिए, किनको, रूप और शरीर, अमर और संतोष। तो एक कहानी आप लोग सुनेंगे किस प्रकार एक बार हुसैन शाह ने एक रामकेली में एक विशाल स्तंभ निर्माण करता था क्योंकि प्राचीन काल में कोई दूरबीन यंत्र नहीं था, शत्रुओं को दूर से देखने के लिए बहुत उच्च खंभा बनाकर उसके ऊपर खड़ा होकर फिर देखते थे दूर दूर से कोई शत्रु आक्रमण करने के लिए किसी दिग में आ रहा कि नहीं। तो उस खंभा के जो निर्माण करता था एक व्यक्ति, पेरू नाम के व्यक्ति निर्माण करता था और सारी कहानी कहने फिर चलो। तो इस खंभा बात में आप देखें कि खंभा के कुछ अंश ऊपर के जो अंश ऊपर भाग निर्माण में थोड़ा कमी था, संपूर्ण नहीं हुआ था। पेरू को तो किसी कारण से उसके अपराध के कारण व उनके अहंकार के कारण वो सोचता था कि मैं इस खंभा से निर्माण से और भी अधिक कुशलता के साथ खंभा भी निर्माण कर सकते, एक अहंकार की भावना कारण। तो हुसैन शाह ने इनको प्राणदंड दिए थे लेकिन खंभा को फिर संपूर्ण रूप में कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सोच रहे थे। एक बार आपने एक जो कि सेवक उनके देह रखी हिंगा इसको लेकर जा रहे थे, जाकर वहीं घूम रहे थे, हटा तो उसको कहे कि जाओ ये पास में जाओ, तुम श्री कृष्ण पर ये गांव में चले जाओ, पास में जो गांव दिख रहा है वहां पर रूप सनातन रहते थे उसी गांव में जाकर ये घूम रहा था। कई घंटों तो कैसे इधर उधर जाता था आता था, लेकिन क्योंकि बादशाह इसको बता ही नहीं था कि किस कारण से जाने के लिए, लेकिन रूप और सनातन दोनों देख रहे थे कि व्यक्ति बार बार घूम रहा। सनातन गोस्वामी इसको बुलाए, पूछे कि क्या बात है, तुम ऐसे बार बार जा रहे हो आ रहे हो, अब तो राजकर्मचारी मालूम पड़ते हो वेशभूषा से, आप ऐसे क्या समस्या भाव आपका। तो उन्होंने बताया कि यही बात है कि हुसैन शाह के साथ में मैं आया था, लेकिन वो खंबा जो पेरू सा खंबा जो मन जो पेरू ने जिस खंबे को बनाया था उसी खंबा के पास मैं भ्रमण कर रहा था, लेकिन हठात मुझे हुसैन शाह ने कहा कि ये गांव में चले जाओ। उसका कारण क्या है रहस्य मुझे पता नहीं था, मैं तो आ गए लेकिन किस लिए भेजा मुझे पता नहीं, और प्राणदंड की भय मुझे स्मरण करा रहा किस प्रकार पेरू को उन्होंने बिना कारण से मार डाला था। तो सनातन कहे कि अच्छा, सब खबर को उससे डिटेल लेकर समझ गए कि ये चाहता क्या हुसैन शाह, उस खंबा को कंप्लीट करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने साथ में बहुत अच्छे राजमिस्त्री और ईंट और कुछ जो खंबा को माने जो काम करने वाले सीमेंट तो उस समय नहीं था, और सब सामग्री देकर भेज दिए। तो जब आया तो हुसैन साहब भटक रहा था, अरे मैं तो मेरा समक सेवक को भेज दिया लेकिन उसको बताया नहीं किस लिए, वो क्या करता होगा पता नहीं। लेकिन सेवक जब वापस आ गया वो देखा कि उसके साथ में राजमिस्त्री भी है, ईंट है और खंबा को उन्हें पूर्ण करने के सब सामग्री भी साथ में लेकर आया। कहे कि अरे तू मेरे मन की बात कैसा समझ गया, मैं तो तुझे कुछ बताया नहीं था, बड़ा खुश हुआ, उसको बड़ा प्राइज देना चाहा, लेकिन वो कहा कि मेरा कुछ नहीं ये काम, ये तो ये सनातन ने मुझे बताया है, कौन वो अमर संतोष जो दो भाई थे वो लोग मुझे भेजा कि ये सब लेके जाओ। तो बार बार तो इनके बारे में सुना था, और हुसैन शाह उस दिन कहा कि जाओ इसको दोनों को बड़े प्रशासन के साथ सम्मान के साथ मेरे पास लेके आओ। जब दोनों को लेकर आए रूप सनातन आ गए तो हुसैन शाह कहा कि आप दोनों को मेरे अधीन में मंत्री पद स्वीकार करना पड़ेगा, यदि आप दोनों मेरी सेवा स्वीकार कर लोगे, मेरे राज्य को शासन भार में मुझे मदद करोगे, मैं तुमको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हूं। किसको? सनातन को। कहा कि मैं तुमका आपको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त देता हूं, और आपके नाम आज से मैं क्या रखा हूं, साकर मल्लिक, और ये जो है संतोष आपको मैं अर्थमंत्री के रूप में नियुक्ति देता हूं, और आपके नाम क्या रहेगा, दबीर खास, और आपकी जो छोटा भाई और है बल्लभ है तो उसको मल्लिक ऐसे उपाधि देकर उसको भी एक मंत्री पद दिया। कहे कि अब तीनों भाई मेरे राज्य को शासन करोगे तो मैं आपको पूरा इंडिपेंडेंस दूंगा, आप कहीं भी हिंदू मंदिर की निर्माण कर सकते हो, हिंदुओं की भलाई के लिए तुम जो कुछ कार्य करना चाहते हो मैं इसमें बाधा नहीं दूंगा, लेकिन यदि आप तीनों मेरी सेवा स्वीकार नहीं करोगे मैं सारा हिंदू मंदिर को तुड़वा दूंगा, हिंदुओं को परेशान करूंगा, ऐसे ही धमकी दी। तो रूप सनातन देखे कि सारे जगत के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के कल्याण के लिए तीनों बिचारे और कोई उपाय नहीं था, स्वीकार कर लिए। राज आदेश हो सके बोले इतना ही नहीं, वो इनको प्राणदंड भी दे सकता, कौन हुसैन शाह। तो इसलिए तीनों स्वीकार कर लिए सारा जगत के कल्याण को चिंतन करके, सारी प्रजाओं के हित के लिए। तो इसलिए ये तीनों हुसैन शाह की सेवा में लग गए। लेकिन इसके बीच में गौरांग महाप्रभु भ्रमण करते करते उन्होंने पुरी में थे, पुरी से वृंदावन यात्रा में निकले, लेकिन असली उद्देश्य उनके था कहाँ आने का, रूप और सनातन को उद्धार करने का। हुसैन शाह ने रूप सनातन के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधा दे दिया था। रामकेली में उन्होंने एक दूसरे ब्रजमंडल का ठीक दूसरा भाई वृंदावन के ठीक दूसरा नकल वृंदावन जैसे बनाकर दिया इनको है, उसमें रूप सागर सनातन सागर राधा कुंड श्याम कुंड अष्ट सखियों की कुंड सब कुछ है, राधा कृष्ण के मंदिर बनाकर दिया उन दोनों की प्रसन्नता के लिए। तो बड़े प्रसन्नता के साथ रूप सनातन वहां रहते थे, लेकिन इन्होंने भी गौरांग महाप्रभु के बारे में पहले से सुने थे, और कई बार रूप और सनातन दोनों पत्र लिखे थे किनके पास में, गौरांग महाप्रभु के पास में, कि हम आपके संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहते, लेकिन कई बार पत्र देने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला था। लेकिन एक बार एक पत्र गौरांग महाप्रभु ने लेकर छोटा सा एक श्लोक लेकर भेज दिए है, पर व्यसन नारी व्यग्रापी गृह कर्मेशु तदेवाश्याद्यः अत्यंत नवसंग रसायनम। जैसे कहे कि आप दोनों इतना अस्थिर मत हो, जैसे ही मैंने कोई पर पुरुष में वती रखने वाले नारी अपने घर में बहुत कार्य को बहुत सुचारू रूप में संपन्न करती है, जैसे उसके पति कुछ उसको डाउट न करे, लेकिन अंतकरण तो उसकी हमेशा किसके बारे में चिंतन करता है, अपने प्रेमिक के, प्रेमिक की चिंतन करता है और उसी के साथ मिलने के मौका देखता है। तो उसी प्रकार आप दोनों बाह्य रूप से सभी काम करते रहो, हुसैन शाह के दरबार मने जो निर्देशन पालन करते रहो, लेकिन अंतकरण में हमेशा मेरी चिंतन करो। अंतकरण में कैसे आप राधा कृष्ण की लीलाओं को विशेष में प्रचार प्रसार करोगे, तो उसकी चिंतन में रहो, समय आने पर तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने स्वयं ये दोनों को उद्धार करने के लिए ये प्लान रख कर ही पहली बार बंगाल होकर वृंदावन जाने का निर्णय लिया था। एक महान भक्त था नृसिंह ब्रह्मचारी, उन्होंने ध्यान करके देख महाप्रभु जो सुना कि पुरी से आ रहे हैं, बंगाल होकर वृंदावन जाएंगे, उन्होंने ध्यान करके ध्यान से है, सिद्ध ब्रह्मचारी था तो ध्यान करके गौरांग महाप्रभु के आने के रास्ता मार्ग पर क्या डालता था, गुलाब के फूल की पाखड़ा, सो गुलाब के फूलों की रास्ता बनाता था, उन्हें रास्ता बनाता था और देखता है कि महाप्रभु उस फूलों की रास्ता के ऊपर आ रहे हैं। जैसे व्यास पूजा होता है गुरु के लिए आप बनाते हो फूल की रास्ता, फूल में तो रास्ता बना रहा था, बंगाल तक ले आया रास्ता बनाकर पूरे ध्यान में, देखा कि महाप्रभु रास्ता पर चलते चलते आए, गंगा के किनारे आए, आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते कान्हा नरसाला तक गए, बिहार बंगाल की बॉर्डर, कान्हा नरसाला के पास पहुंच गए। तो वहां से फिर वो ना आंख में बंद करे जितने भी रास्ता को आगे और बढ़ाने के लिए फूलों की पखड़ा डालने के लिए ध्यान कर रहा था और आगे नहीं बढ़ा पाया, तब आंख खोला ध्यान तोड़ गया, तब डिक्लेयर कर दिया, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि कभी भी महाप्रभु इस टाइम कहां नहीं जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे, यहीं से वापस जाएंगे। वो देख रहा था कि ध्यान में फिर वो महाप्रभु वहीं से वापस आकर कहां आ गए, राम के लिए। तो उसी प्रकार उसकी जैसे ही ने कहना था महाप्रभु ने इसी को स्वीकार की, वो आए बंगाल की गश्त में, लेकिन कन्हैया नरसाला से फिर वापस, क्योंकि महाप्रभु के साथ में लाखों लाखों लोग चलते थे और हुसैन शाह को बड़ा तंग, माने वो भी सोचता था कि व्यक्ति कौन है, मैं सम्राट हूं, मेरे को कोई ऐसा सम्मान नहीं देता है और इसके पीछे लाखों लोग ऐसे ही चलते हैं, इसको कोई तो वो कोई किसी को पेमेंट भी नहीं करता किसी कुछ है, और अपने आप इसके साथ इतने हजारों लाखों लोग कैसे चल रहे हैं। रूप सनातन को बने दबीर खास साकरमल को बुलाकर एकांत में पूछा ये कौन है, लेकिन वो जानता था कि ईश्वर नहीं होने से इसी प्रकार कोई भी किसी की फलवार नहीं बन सकते, इसलिए हुसैन शाह अंतकरण में जानता था कि गौरांग महाप्रभु जरूर ईश्वर है, भाई ईश्वर अंश में ये व्यक्ति जो शक्तिशाली है। लेकिन रूप जो दाबीर खा साकर मल्ली को पूछे तो उन्होंने इसको कवर करना जान लिया, नहीं ऐसा ही कुछ बोले, नहीं नहीं तो मैं मुझे छुपाओ मत, मैं जानता हूं ये स्वयं ईश्वर है, कौन गौरांग महाप्रभु। हुसैन शाह तो इस प्रकार समझने लगा, लेकिन सनातन फिर भी सोचे कि मुसलमान की मति कभी भी दल से बिगड़ सकता है, उन्होंने गुप्त भाव से खबर दिए कि महाप्रभु के पास में देखिए वृंदावन यात्रा की परिवाटी, ऐसे लाखों लोगों को लेकर साथ में वृंदावन यात्रा नहीं किया जाता, अच्छा कि सन्यासी को तो अकेले जाना चाहिए, नहीं तो एक दो सेवक साथ में रहें, इतने लाखों लोगों को लेकर वृंदावन चलना है, कई रास्ता में कई प्रकार की राजा के द्वारा मुसलमान राजाओं सब है उनके किसी डाउट करके कई प्रकार के उनके अनिष्ट भी कर सकते हैं। महाप्रभु ने प्रकृति में इनको तो उद्धार करने के लिए आए थे, रूप सनातन को इनके उपदेश को स्वीकार कर लिया, सनातन की सलाह को लेकर वहीं से फिर वापस आ गए रामकली, और रामकली आकर आज भी तमाड़ वृक्ष वहां पर विराजमान है, जिस तमाड़ वृक्ष के नीचे रात्रि में जा संध्या समय में जाकर महाप्रभु पहुंचे, और रूप सनातन जो कि हुसैन शाह के मुख्यमंत्री के रूप में थे, दोनों साधारण गांव की निवास की तरफ राज पोशाक को उतार कर साधारण धोती कुर्ता पहनकर आए, किनको मिलने के लिए, गौरांग महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे तिलक के साथ, तीनों भाई साथ साथ, उस समय जीव गोस्वामी भी लगभग 10 साल की उम्र में थे, उन्होंने भी उनके साथ में अपने पिताजी जी और ताऊ के साथ में वो भी आकर मिले थे, किनको, गौरांग महाप्रभु को मिले। आज भी प्रत्येक साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर वहां पर बहुत बड़े महोत्सव होता, क्योंकि इसी दिन महोत्सव आज भी चल रहा है, जो रूप सनातन और अनुपम तथा जीव ये किसको मिले थे, चैतन्य महाप्रभु को, उसी तमाल वृक्ष के नीचे, और महाप्रभु ने दोनों की अत्यंत दैन्यता और विनय को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और इसी समय में उनको निर्देशन भी दिए कि ये विषय को छोड़कर जितने संभव ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको प्रेरणा दिए और महाप्रभु ने फिर इनके नाम चेंज कर दिए, उनके दीक्षागत नाम, क्योंकि दीक्षा को नाम कौन चेंज करता है, जो गुरु होता है वो शिष्य का नाम चेंज कर लेता है। तो महाप्रभु ने इसलिए दोनों का विषय, तीनों का नाम चेंज कर दिए हैं। उन्होंने कहे कि आज से तुम्हारा नाम और से वो पहले अमर था और ये हुसैन शाह चेंज करके नाम रख दिया था क्या, साकर मल्लिक, आज से तुम्हारा नाम और साकर मल्लिक नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सनातन। महाप्रभु ने इनके नाम सनातन दिए। कई प्रामाणिक आचार्य कहते कि सनातन देने का तात्पर्य है कि महाप्रभु प्रकृत में रूप सनातन गोस्वामी, जदियो वो कई लवंग मंजरी आदि कहते, लेकिन फिर भी ये माना जाता कि वो चतुस्सन की मिलित अवतार है। चतुस्सन कौन, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो इसीलिए महाप्रभु ने उनके नाम रखा सनातन, सर्वशास्त्र विति है, सर्वशास्त्र ज्ञाता। तो भागवत के ऊपर उनकी टीका विशेष प्रसिद्ध है, किनकी, सनातन गोस्वामी की, हरित भक्ति विलास आदि ग्रंथ। तो इसलिए महाप्रभु ने उनके नाम रखा सनातन। और उप जो कि संतोष, जो पहले संतोष नाम था और इनकी चेंज करके हुसैन शाह नाम रखा था दबीर खास, महाप्रभु ने कहे कि आज से तुम्हारा नाम और दबीर खास नहीं रहेगा, आपके नाम क्या रहेगा, रूप, क्योंकि वो स्वयं रूपमंजरी है, स्वयं रूपमंजरी, स्वयं रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटितम है, स्वयं वही रूपमंजरी स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए उनके नाम गौरांग महाप्रभु ने रूप करके रखा। और बल्लभ के नाम रखे अनुपम, क्या रखे, अनुपम बल्लभ, बाद में मल्लिक के नाम रखा था हुसैन शाह, रूप ने महाप्रभु ने उनके नाम रखा अनुपम। इसी प्रकार उनके नामकरण देकर और उनको प्रेरणा देकर कि जितने समय विषय से निकालकर संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए, महाप्रभु तो फिर वापस आ गए पुरी में, लेकिन पुरी आकर फिर दोबारा निकाले वृंदावन गस्त में, बंगाल छोड़कर डायरेक्ट रास्ता में झारखंड के जंगल होकर आ रहे थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमेशा कुछ उपाय ढूंढते थे कैसे निकालना है इससे। उन्होंने एक विशेष पंडितों को, ब्राह्मण को नियुक्त दिया कि उन्होंने कृष्ण मंत्र की पुरस्चरण विधि करके भगवान को प्रसन्न करके प्रार्थना करें कि जैसे ये विषय के बंधन से उनकी छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसका उस समय रीति था, उस मंत्र को पुरस्चरण किया जाता था, इतने लाख राम नाम जप पाकर तो उसकी फल स्वरूप इनको विषय से छूट हो जाएगा, ऐसे उन्होंने उपाय किए। पहले कौन छोड़ दिया संसार, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी पहले छोड़ दिए। हुसैन शाह एक बार दिग्विजय में राज्य के बाहर था, तो पहले रूप गोस्वामी ने अपने छोटा भाई अनुपम को लेकर राज्य से निकला है। जितने अर्थमंत्री थे इनके, जो तनख्वाह के रूप में जितने भी पैसा आ रहा था, तो एक बोट में लोडिंग करके लेके आए हैं, गंगा के लोडिंग करके, क्या था वो, पेपर के नोट, क्या था, सोने की मोहर है, सोने की मोहर, पूरा करोड़ों रुपये की संपत्ति है, उसको लोडिंग करके लाए, लाकर अपने घर में जैसे व्यवस्था, उन्होंने आप जानते हैं 50% उन्होंने ब्राह्मण को वैष्णव को भगवान की सेवा में मंदिरों में दे दिया, और 50% की फिर अधा करके 25% अपने परिवार वर्गों को दे दी, क्योंकि परिवार के प्रति उनकी कर्तव्य था, तो उनको दे दी कि तो उनके मेंटेनेंस के लिए, भविष्य के लिए, और 25% उन्होंने साथ में रखा इमरजेंसी के लिए, भविष्य में भक्ति ग्रंथ आदि प्रेरण करने के लिए, प्रणयन के लिए उनको रखे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने छोटा भाई को लेकर, छोटा भाई अनुपम को लेकर आ गए, जीव गोस्वामी के पिताजी, तो लेकर आकर पता लगा कि अभी महाप्रभु कहाँ पहुँच गए, इलाहाबाद में पहुँचे हुए थे, तो सब उन्होंने आकर इलाहाबाद पहुँच गए, और इलाहाबाद में आकर त्रिवेणी संगम के आसपास में ही महाप्रभु किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे दोनों। जब इन्होंने पहले पहुँचे कि इलाहाबाद में, उस समय तो महाप्रभु बड़े महासंकीर्तन में व्यस्त थे, कहाँ पर, बेणी माधव मंदिर में, लाखों लाखों लोग महाप्रभु के साथ में नाचते थे, गाते थे, नृत्य होता था, सभी लोग हरि बोल हरे कृष्ण में मग्न थे, और उस समय महाप्रभु को मिल पाना दोनों भाई को संभव नहीं था, तो उन्होंने भी संकीर्तन में भाग लेकर वहीं नाचे गाए। लेकिन संध्या समय में महाप्रभु जब अपने निवास स्थान में वापस आए, दोनों भाई भी वापस आए, महाप्रभु अपने निवास स्थान में जब रहते थे, इन्हें बाहर में आकर जोर जोर से महाप्रभु को मिलने के लिए आए, और महाप्रभु जब उनके सामने आए तो जोर जोर से उनके प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हुए उनको प्रणाम किए। हम प्रत्येक दिन वो प्रणाम मंत्र गाते हैं, तो उनको कौन सबसे पहले कौन आवृत्ति किया था, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने स्वयं स्वतस्फूर्त भाव से उनका मुखारविंद से ये प्रणाम मंत्र निःसृत हुआ, नमो महा बदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। भगवान सबके सामने छुप जाते हैं, भक्त के सामने नहीं छुप सकते। रूप गोस्वामी जानते थे, उन्हें पहचान गए थे कौन है, इसलिए कहे कि आप वही कृष्ण है, अभी किस रूप में आप प्रकट हुए हो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। कृष्ण प्रेम किस लिए प्रकट हुए, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए, स्वयं कृष्ण लेकिन अभी श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होकर कृष्ण प्रेम को जो सर्वत्र वितरण कर रहे हैं, उसी महावदान्य अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उनको प्रणाम किए और रूप गोस्वामी को देखकर सामने महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनको उठाकर आलिंगन किए और उनके छोटे भाई का भी परिचय लिए। उनके छोटा भाई कौन, अनुपम, अनुपम लेकिन राम भक्त थे, कौन अनुपम, ये दोनों भाई रूप सनातन कृष्ण भक्त थे लेकिन वो छोटे रघुनाथ के भक्त थे। दोनों भाई कई कभी कभी रूप अनुपम को कहते थे कि तुम ये राम भक्ति छोड़ दो, हम दोनों कृष्ण भक्ति कर रहे, तुम भी करो, तीनों मिलकर कथा कृष्ण कथा में हमेशा रहेंगे, तुम्हारे लिए रामायण कौन चर्चा करेगा। लेकिन उन्होंने कहे कि मैं इस सिर को बेच चुका हूँ, किसके चरण में, रघुनाथ के चरण में, वहां से निकलना मेरे लिए संभव नहीं है। तो जब महाप्रभु ने फिर उनको सांत्वना दे के रखे, तो इसी प्रकार ये दोनों भाई महाप्रभु को मिले और चैतन्य महाप्रभु इसके बीच में, तो उन्होंने वल्लभ भट्ट के घर में गए। फिर वहां से वापस आने के बाद वल्लभ भट्ट के घर गंगा के दूसरे साइड में आड़ियल ग्राम में आज भी वह घर है, जहां पर उन्होंने निमंत्रण करके महाप्रभु को लेकर गया था और महाप्रभु ने ये दोनों भाई को भी साथ में लेकर गए थे उनके घर में। लेकिन वहां से जब वल्लभ भट्ट के घर में वापस आए, वापस आने के बाद महाप्रभु ने 10 दिन तक शिक्षा दिया किनको, रूप गोस्वामी के दशाश्वमेध घाट जो कि इलाहाबाद में है, तो है इलाहाबाद में, उसी के ऊपर बेणीमाधव मंदिर है, दशाश्वमेध घाट उसके ऊपर बेणीमाधव मंदिर है। तो एकांत स्थान में लेकर महाप्रभु ने उसी दशाश्वमेध घाट के पास, आज भी चैतन्य महाप्रभु चरण चिन्ह वहां पर है, दशाश्वमेध घाट के ऊपर में जहां पर रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने बैठा कर शिक्षा दिए थे, उस स्थान आज भी मौजूद है और गौरांग महाप्रभु के वहां पर बहुत सुंदर चरण चिन्ह है। रूप गोस्वामी स्वयं इसको अपने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना के प्रारंभ से ही स्वीकार करते हैं। हृदि जस्य प्रेरणया प्रवर्तितो ह्यंबराक रूपे अपि तस्य हरे पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य। मैं अयोग्य तथा माने भक्ति शास्त्र को प्रणय करने में संपूर्ण रूप में अयोग्य व्यक्ति हूँ, लेकिन जिनकी प्रेरणा मेरी हृदय, जिन्होंने मेरे हृदय में बैठकर मुझे प्रेरणा देकर ये ग्रंथों को लिखवा रहे हैं, उन चैतन्य चंद्र की चरण कमल को स्मरण करते हुए और उन्हीं के पद कमल की शरण वंदना करते हुए मैं भक्ति रसामृत ग्रंथ की प्रारंभ कर रहा हूँ। कौन इनको प्रेरणा दे रहा था, चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो मुख्य शिक्षा रूप गोस्वामी के प्रदान किए थे, वो चैतन्य चरितामृत के मध्य लड़ा के 19वें अध्याय में विशेष रूप में वर्णन की गई है। थोड़ा बहुत हम इसके कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी सबसे पहले महाप्रभु को मिले थे तो क्या पूछे थे, कहे हमें कहने हमाए जानता पत्र, मैं कौन हूं, मेरे अपने परिचय के बारे में पूछे थे। तो रूप गोस्वामी को इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहे कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली हया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर सेचन। कहे कि हे रूप, ऐसे 84 लाख ज्वनि में ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कौन जीवात्मा है, भ्रमण करते हुए किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा की द्वारा भक्ति लता के बीच इसकी हृदय में रोपण की जाती है गुरु के माध्यम से, और उस व्यक्ति भाग्यवान व्यक्ति फिर माली होकर उसी बीजों को आरोपण माने उसमें श्रवण कीर्तन रूपी जल डालकर इसको उगाता है, वृक्षास्त्र उगता, जैसे हम खेती में बीज डालते थे, उसके बाद खेती को कर्षण करते उसके बाद बीज डालने के बाद फिर पानी देने से उगता है, अंकुरित होता है, उगता है। उसी प्रकार जो भक्ति जो भक्त है, जो माली के रूप में इस भक्ति बीज को भी श्रवण कीर्तन रूपी जल के द्वारा इसको सेचन करके इसको उगाता है, और ये ऐसे ही श्रवण कीर्तन जल डालने से वो आस्ते आस्ते उगकर ऊपर बढ़ता है। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, बिरजा ब्रह्म लोक भेदी परव्यम पाय, आस्ते आस्ते इस श्रवण कीर्तन करते रहने से गुरु की द्वारा जो मंत्र प्राप्त किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की जप और कीर्तन करने लगा। आस्ते आस्ते भक्ति बीज बढ़ने लगा, लता के रूप में बढ़ते बढ़ते वो श्रवण कीर्तन रूपी जल को प्राप्त करके आस्ते आस्ते भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को तोड़कर विरदा नदी को पार करके परब्रह्म वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। आस्ते आस्ते कहां जाकर पहुंच जाता, कृष्ण के चरण कमल में पहुंच जाता। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, आस्ते आस्ते जाकर भगवान चरण, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लेता है इसी हरे कृष्ण मंत्र के श्रवण कीर्तन करने से। है केवल यदि हरे कृष्ण मंत्र को कई विशुद्ध शुद्ध भाव से नाम अपराध से रहित होकर शुद्ध भाव से कृष्ण नाम लेगा तो भगवान के चरण कमल उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे ही भजन में मस्त रहने वाले व्यक्ति भी यदि किसी ना किसी कारण से क्या करता है, वैष्णव अपराध, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उखाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पाता। लेकिन महाप्रभु ने कहे कि रूप ऐसे ही भजन करके भी यदि कोई साधु निरपराध नाम लेकर भी यदि किसी ने जाकर भगवान के चरण कमल को प्राप्त भी कर लिया, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो गया, हमेशा भगवान के चिंतन करने में वो समर्थ हो गया, लेकिन फिर भी यदि किसी ना किसी कारण से ये पागल हाथी उसकी भक्ति के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, कौन है, वैष्णव अपराध। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ये पागल हाथी यदि किसी ना किसी कारण से भक्ति के राज्य में भक्ति का गार्डन के अंदर घुस गया तो पहले वो भक्ति का गार्डन को सब नष्ट भ्रष्ट करके समाप्त कर देगा। है पहले तो जाएगा उखाड़ के, कभी कभी इसको उखाड़ के फेंक देता है भक्ति लता, जो लता को इसकी जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, उससे उसकी टहनिया शाखा प्रशाखा पत्ते सब सूख जाते हैं। तो इसलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती रजै छे नाहय उद्गम। इसलिए महाप्रभु ने सतर्क कराते कि उर्प गोस्वामी के माध्यम से भक्तों को जो भक्ति की कृष्ण भक्ति कर रहे हैं इनको बहुत सतर्कता के साथ इससे बचना चाहिए, किससे, वैष्णव अपराध से। इसलिए जो भक्त इसको बहुत जत्न के सहकार इसको आवरण करके रखता है कि जैसे ये अपराध रूपी हस्ती, वैष्णव अपराध रूपी हस्ती जैसे अंदर में प्रवेश न कर जाए। कैसे इसका आवरण, कैसे आवरण, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, भक्तों की संगति में इसलिए हमेशा रहता है और भक्तों की सेवा करके ही वो वैष्णव अपराध से, वैष्णव अपराध रूपी ये पागल हाथी से बचने के लिए हमेशा प्रयास करता है। यदि भी किसी कारण से भी व्यक्ति वैष्णव अपराध से भी बच जाता है, वैष्णव अपराध बच गया, बस वैष्णव अपराध नहीं करता, वैष्णव के संग में रहता, उनकी सेवा करके ही अपराध करने की जो भावना से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके पास साथ साथ और कुछ भी भावना आता है, भक्ति जात जैसे अनर्थ कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक तो अपराध जात अनर्थ ये गया, लेकिन और एक अनर्थ आता है भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ कैसा है, पूजा मान प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण। कह की हे रूप, वैष्णव अपराध से बच जाने पर भी और एक उपशाखा भक्तिलता तो जा रहा है इसके साथ में, लेकिन और एक उपलता बढ़ता है, वो भक्तिलता जैसे दिखाई पड़ता है लेकिन भक्तिलता नहीं है, दिखाई पड़ता कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिष्ठित हो रहा है, उसके सम्मान बढ़ रहा है, अच्छा उसके पोस्ट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रकृति में भक्ति लता जैसे दिखाई पड़ते कि बाहर के लोग सोचते कि भक्ति में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ झूठा सम्मान पोजिशन ऐसे मिलते जा रहा है ये, लेकिन व्यक्ति इसी के कारण फिर असली जो मुख्य लता भक्ति लता को पोषण नहीं कर पाता है। यदि लतार संगे उठे ऊपर उपशाखा भुक्ति मुक्ति आदि वांछा जत असंख्यतार लेखा, ये भुक्ति मुक्ति ये विशेष रूप में उपशाखा, संसार को भोगने की इच्छा, आज नया भक्त हूं कल टेम्पल कमांडर बन गया, नेक्स्ट क्या पोजीशन की आज क्या जरूरत है, जनरल मैनेजर, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट, बाद में फिर और कुछ जो प्लान रहेगा, तो ये सब मैंने समाज में प्रतिष्ठित बनने का, भुक्ति भोग करने का, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा व मुक्ति जो इच्छा, जो कि साजुज्य मुक्ति विशेष रूप में ब्रह्म साजुज्य व अन्य प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करने की जो इच्छा रखकर फिर वो भजन साधन करता है, ये भी एक प्रकार के अनर्थ सृष्टि हो जाता है, भक्ति जात अनर्थ इसको कहते हैं। तो इसलिए इसी कारण से जब इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर वो क्या करता है, निषिद्धाचरण, कुटीनाटी, जीव हिंसन आदि ये सब सूक्ष्म रूप में उसके आचरण में आ जाते हैं, उस व्यक्ति के आचरण में आ जाता है, क्योंकि पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए ये सब जरूरत पड़ जाता है। क्या क्या? निषिद्धाचरण, जो आचरण वर्जित है उसे आचरण करना, कुटीनाटी करना, किसको ये व्यक्ति ये आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे नीचे टांग खींचना है, नीचे कैसे गिराना है, तो उसके लिए प्लान बनाना कुछ है, कुटीनाटी, जीवों के प्रति हिंसा करना, ये सब भावना आ जाता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसके पीछे पड़ जाता है। तो फिर उसकी भक्त इसकी भक्तिलता आस्ते आस्ते सूख जाता है, भक्तिलता आगे नहीं बढ़ता, यदि ये जड़ से उखाड़ नहीं जाता, वैष्णव अपराध से जड़ से उखाड़ जाता है, लेकिन ये सब ये जो भोग आदि इच्छा होने से तो पूरे जड़ से न उखाड़ने पर भी ये सूख जाता है, मूल शाखा सूख जाता है भक्तिलता, लेकिन इसके पास में ये जो शाखा उपशाखा उठा ये श्रवण कीर्तन जल अर्थात अपराध के साथ नाम लेने के कारण क्या होता है, अपराध के साथ नाम लेने से सारी सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होते जाता है, अपराध के साथ में नाम लेने से नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जितनी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाता है, वो बहुत प्रतिष्ठित बन जाता है समाज में, इसकी भौतिक इच्छाएं पूरे होते रहता, बहुत सम्मानित व्यक्ति बन जाता है केवल क्या करने से, अपराध के साथ नाम लेने से, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम उससे दूर रहता है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, प्रथम ही उपशाखा करे छेदन तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन, इसलिए बड़े सतर्कता के साथ साधक को इससे बचना चाहिए, किससे, उपशाखाओं से, पूजा मान प्रतिष्ठा भुक्ति मुक्ति इच्छा इससे बचकर, फिर अपराध शून्य होकर, अपराध शून्य है लह कृष्णनाम, इस कलयुग में कोई दूसरे उपाय नहीं है, यही नाम ही साधन, यही साधन की मुख्य तत्व है, कौन सा, नाम, प्रारंभ से अपराध के साथ नाम लेते हैं, अशुद्ध नाम लेना भगवान के चरण में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है, प्रारंभ से ही नाम लेते हैं अंत में भी वही नाम लेना, लेकिन प्रारंभ से अपराध के साथ अंत में अपराध से मुक्त होकर शुद्ध नाम लेना है, प्रेम नाम इसको कहते, गौरांग महाप्रभु केवल ऐसे ही नाम लेने के लिए आए नहीं, उन्होंने शुद्ध प्रेम नाम देने के लिए आए थे, उसी शुद्ध प्रेम नाम लेने से ही प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। इस प्रकार महाप्रभु ने बहुत सारा आलोचना करना संभव नहीं है, यही असली पुरुषार्थ है मनुष्य की, भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार शिक्षा देकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहे कि अभी तुम जाओ कहाँ, वृंदावन जाओ, वृंदावन में तुमको जाकर मेरा एक पहले भक्त उधर सुबुद्धि राय है उसको मिलो, और इन्होंने आप लोग को गाइड करेगा ब्रजमंडल के सारे तीर्थों को दर्शन कराने के लिए, लेकिन आपको मैं विशेष रूप में सेवा दे रहा हूँ कि ब्रज में जाकर आप लुप्त तीर्थों को उद्धार करो, विग्रहों की पूजा सेवा की, फिर विग्रह सब लुप्त रूप में है, ऐसे इन तीर्थों को उद्धार करके विग्रहों की सेवा पूजा की प्रतिष्ठित करो, मंदिर निर्माण करना, ग्रंथों को प्रणयन करना और भक्ति शास्त्र के प्रचार करना, भक्ति प्रणयन तथा उसके प्रचार ये सब कार्य में देकर महाप्रभु ने इनको कहे कि आप दोनों भाई आप पहले जाओ, आपकी बात में रूप सनातन अवश्य आ रहा है। रूप गोस्वामी ने कहे थे कि मेरा भाई बड़ा भाई तो जेल में है, महाप्रभु कहे चिंता मत करो जेल से छूट गए, अब ये बात में आकर आपको मिल जाएंगे, कौन, सनातन। इस प्रकार कहकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी की वृंदावन भेज दिया, रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ में आए और आकर वृंदावन में सुबुद्धि राय की गाइडेंस में ब्रजमंडल परिक्रमा करके फिर ब्रज के सभी तीर्थ स्थान को दर्शन करके कुछ दिन रहे, लेकिन फिर सोचे कि अभी तक बड़ा भाई आए नहीं, कौन, सनातन। थोड़ा व्यग्र हुई कि क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया था, अब जेल से निकले कि नहीं निकले ऐसे डाउट करके उन्होंने आ रहे थे बंगाल के मार्ग पर आने के लिए, लेकिन आकर जब बनारस पहुंचे वहीं पर गंगा के किनारे उनके छोटे भाई का देहांत हो गया, कौन, अनुपम की देहांत बाद नित्यलला में प्रवेश कर गए अनुपम। तभी उन्होंने बंगाल जाने के जो निर्णय लिया था उसको छोड़कर वो महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी के मार्ग पर चल दिए, पुरी के मार्ग पर जो जा रहे थे उस समय उन्होंने वृंदावन में जो थे मन में प्लान बनाए थे कि एक नाटक लिखने के लिए, क्या नाटक लिखते थे, भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवनी को अनुसरण करते हुए उन्होंने एक नाटक लिखना चाहते कृष्ण के जीवन के ऊपर, लेकिन सोचते थे कि वृंदावन की लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला सभी को एक ग्रंथ में लिखने के लिए एक नाटक के रूप में लिखने, महाप्रभु ने किस प्रकार वृंदावन गए, वृंदावन में लीलाओं को संपन्न करके फिर किस प्रकार अक्रूर आकर इनको मथुरा ले गए, मथुरा से फिर द्वारका गए, सारे लीला को संपूर्ण जीवनी को एक ग्रंथ में लिखने के लिए मैंने प्लान बनाए थे सब कुछ, उसके लिए सब डाटा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर उड़ीसा की बॉर्डर में एक गांव था सत्यभामापुर, वहां पर पहुंचे। रात्रि में वहां विश्राम कर रहे थे तो सत्यभामा जी ने स्वयं इनके सपने में आए। कौन? भगवान श्री कृष्ण की पाटरानियों में से मुख्य दो, रुक्मणी और सत्यभामा। सत्यभामा इनके सपने में आकर कहे कि रूपो, तुम जो नाटक लिखने प्लान बना रहे हो, लेकिन मेरे लीलाओं को अलग लिखो, पूरी लीलाओं को अर्थात द्वारका लीलाओं को अलग से लिखो, क्योंकि राधारानी के साथ में उनकी लीला मिक्स होगा तो उनके कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा। तो बोले कि द्वारका लीला सेपरेट लिखो और तुम वृंदावन अलग, ऐसा कहकर यदि लिखोगे, मेरे आदेश पालन करोगे, तुम्हारे बहुत कल्याण होगा, तुम्हारा नाटक बड़े प्रसिद्ध होगा। ऐसे कहकर सत्यभामा अंतर्ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी ने समझ गए कि सत्यभामा की इच्छा है कि द्वारका लीला को सेपरेट लिखने के लिए। तो उन्होंने वापस आए, नहीं पुरी में पहुंच गए। पुरी में जाकर हरिदास ठाकुर के पास में रहते थे और गौरांग महाप्रभु भी एक दिन भ्रमण करते करते प्रत्येक दिन जाते थे हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए। तो हरिदास ठाकुर के पास में पहुंचे और रूप गोस्वामी आए। जब उनको पता लगा तो रूप गोस्वामी भी आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे और कुछ कई रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने उनकी अंतरंग पार्षदों के साथ मिलाए। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सरव भट्टाचार्य आदि जितने भी गदाधर पंडित आदि सभी महान पार्षदों के साथ इनको मिलाए। किनको? रूप गोस्वामी को। ये महाप्रभु की विशेष कृपा पात्र दोनों। कौन? रूप सनातन। ये नित्यानंद चरण आश्रय किए बिना डायरेक्ट गौरांग महाप्रभु की अनुजाई बन गए, उनके डायरेक्ट पार्षद, डायरेक्ट शिष्य। किनके? गौरांग महाप्रभु के। तो इसलिए महाप्रभु ने इनको परिचय करके कहे, आप लोग आशीर्वाद करो, नित्यानंद इसको आशीर्वाद दो। किसको? रूप को आशीर्वाद दो। सभी को कहते आशीर्वाद दो, मेरे ये मैंने मेरा चरण आश्रित है, मैंने इसके नाम रूप रखा हूँ, एक योग्य व्यक्ति है, ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये समर्थ व्यक्ति, आप लोग सभी आशीर्वाद करो इसको। तो महाप्रभु कहने पर सभी लोग आशीर्वाद करते थे। यहाँ पर ये इनको डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो महाप्रभु इनको कहते थे कि आशीर्वाद करो इनको, सभी लोग आशीर्वाद किए। महाप्रभु की इतनी कृपा देखकर सभी गौर पार्षद इनको भूरी भूरी प्रशंसा करते, इनको आशीर्वाद प्रदान किए। किनको? रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने इनको थोड़ा सा कृपा करने के बाद इनको कहे कि देखो रूप, तुम जो नाटक लिखने के लिए प्लान बना रहे हो, लेकिन कभी भी वृंदावन के बाहर इसको नहीं मत निकालो। किनको? कृष्ण को। कृष्ण एक अन्य जदु संभूत जस्तु ब्रजेन्द्र नंदन वृंदावनम परित्यज्य स क्वचित नैव गच्छति। तंत्र शास्त्र में कृष्ण जामल से महाप्रभु ने कोट करके कहा कि रूप गोस्वामी देखो, ये ब्रजेन्द्र नंदन कृष्ण कभी ब्रज की बाहर नहीं जाते हैं, तो उनको तुम ब्रज की बाहर मत निकाल लो। किनको? कृष्ण को। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। ब्रजेन्द्र नंदन कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। कृष्ण को बाहिर न करिह ब्रज हैते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहांते कहांते। ये ब्रजमंडल की सीमा को छोड़कर, विशेष कर वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए तुम इनको बाहर मत निकालो। तुमको समझे, महाप्रभु ने इनको समझाए कि भगवान श्री कृष्ण के तीनों लीला में किस प्रकार ब्रजेंद्र नंदन जो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, ये ब्रजेश ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हमेशा ब्रज में ही रहते हैं। जो मथुरा द्वारका में चले गए वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव नंदन है। इसलिए महाप्रभु ने समझा कर इनको है कि इसलिए नाटक सेपरेट करो, ब्रजलीला को सेपरेट और मथुरा लीला द्वारका लीला को सेपरेट। तो रूप गोस्वामी ने समझ गए। पहले तो वो उन्होंने मुझे आदेश दिए थे, सपनों में आदेश दिया था। कौन? सत्यभामा ने। अभी महाप्रभु ने और क्लियर कर दिया इसको। इसलिए उन्होंने दो नाटक सेपरेट कर लिखने के लिए प्लान बनाया। उन्होंने दो नाटक लिखे, विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव में विशेष रूप में वृंदावन की लीलाओं को और ललित माधव में मथुरा द्वारका लीला को। नाटक जब दे लिखना प्रारंभ करते थे, एक दिन महाप्रभु ने सभी को लाकर पहुंचाए उधर हरिदास ठाकुर भजन कोटी में, सिद्ध बकुल के पास, वहीं बैठ कर लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रूप क्या लिख रहे हो, थोड़ा दिखाओ, हम लोग सब पढ़ेंगे, थोड़ा सुनेंगे। रूप गोस्वामी बड़े संकुचित भाव से, बड़े नम्रता से वो दिखा नहीं चाहते, लेकिन रामानंद राय वहां पर थे जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध नाट्यकार है और जिन्होंने जगन्नाथ बल्लभ के नाटक भी लिखे, महाप्रभु के कृष्ण कथा सुनाए थे। महाप्रभु ने विशेष रूप में चाहते थे कि रूपों की महिमा सभी को पता लगे, सारे अंतरंग पार्षद को। तो उन्होंने कहे कि अच्छा क्या लिख रहे हो रूप? रामानंद कहे कि थोड़ा सुन के पहले सुनाओ, क्योंकि ये बड़े नाट्य शास्त्र में पारंगम थे। तब इन्होंने कहा कि अच्छा नाम की महिमा कैसे लिखे हो, क्या क्या लिखे हो, कलयुग के युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, तो नाम की महिमा के बारे में क्या लिखे। पहले तो चैतन्य महाप्रभु वंदना किए हैं पहला श्लोक में, नंदी श्लोक पहले मंगलाचरण में महाप्रभु कहे कि इसको मत सुनाओ, क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान के रूप में वंदना कर रहे थे, कौन रूप गोस्वामी ने, तो इसे कान में हाथ देकर बोले इसको छोड़ो आगे पढ़ो, इसको मत सुनाओ, किसको गौरांग भगवान के रूप में वर्णन कर रहे हो, इसको ये ठीक नहीं आगे पढ़ो। तो आगे नाम की महिमा कहते हुए उन्होंने श्लोक पढ़ा, तुंडे तांडविनिरतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ क्रम्बिनी घटायते कर्णार्बुदभ्य स्पृहां चेत प्रंगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणि कृतिं न जाने जानितः कियत् भीर अमृतई कृष्णती वर्णदयी। रूप गोस्वामी ने जब ये श्लोक पढ़े प्रारंभ से नाम की महिमा को वर्णन करते हुए सभी गौरवपार्षद ने बड़े आश्चर्यचकित होकर हैं, सभी के आंख से अश्रुधारा बहने लगा। रामानंद राय स्वरूप दामोदर कहे कि हम तो नाम की महिमा का वर्णन में ऐसे ही हजारों श्लोक पहले सुन चुके हैं, लेकिन ऐसे नाम की महिमा कोई वर्णन नहीं किया। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि जब ये दोनों कृष्ण ये दो वर्ण रूपी ये जो भगवान के नाम कृष्ण जो मेरे मुखारविंद में प्रवेश जिह्वा से जो बाहर निकलता है, कृष्ण उच्चारण करते ही मेरे ऐसे ही इच्छा प्रकट होता है कि मुझे लाखों जिह्वा की प्राप्त हो, और मैं लाखों जिह्वा में जैसे कृष्ण नाम को उच्चारण करते रहूं, मेरे कभी भी मुझे तृप्ति नहीं मिल रहा है, एक बार मेरे अधिक से अधिक और कृष्ण नाम को उच्चारण करने में मेरी इच्छा हो रही है, लाखों जिह्वा की प्राप्त लाखों मुख और जिह्वा की प्राप्त करने की इच्छा हो रहा। जब ये कृष्ण नाम के उच्चारण मेरे कर्ण गुहर में प्रवेश कर जाता है तो ये कर्ण को फिर मेरे ऐसे ही इच्छा प्रकट होता है ऐसे ही लाखों कर्ण मुझे प्राप्त हो, ये कृष्ण कथा को कृष्ण महिमा को श्रवण करने के लिए, कृष्ण नाम को स्मरण करने के लिए। और जब इस कृष्ण नाम की उच्चारण आस्ते जाकर मेरी अंतकरण में हृदय में प्रवेश कर जाता है, चेत प्रांगण संगिनी विजयते, तो हृदय के अंदर में प्रवेश करता है, हृदय में जितनी प्रकार की आवर्जना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी को निरस्त करके परास्त करके वहां पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर देता है। तो इस प्रकार जब इन्होंने नाम की महिमा को विशेष रूप में वर्णन किए हैं अपने मंगलाचरण में उनके नाटक में नाटक की प्रारंभ से, तभी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर आदि जो वैष्णवगण बड़े भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए रूप गोस्वामी को विशेष आशीर्वाद प्रदान किए, और सभी वैष्णव से आशीर्वाद प्राप्त करके ही रूप गोस्वामी उस नाटक को वहीं पर उसी पुरी में गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए रचना किए। लेकिन इसी समय में बीच में रथ यात्रा के महोत्सव रथ यात्रा के उत्सव पुरी में संगठित हुआ, और रथ यात्रा के सामने महाप्रभु को सामने देखे कि गौरांग महाप्रभु जो जगन्नाथ के सामने रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं, तो एक कुछ श्लोक बार बार आवृत्ति करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि गीत गा रहे हैं, लेकिन गीत का अर्थ कोई बाहर का लोगों को किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन महाप्रभु गा रहे हैं तो एक व्यक्ति इसको समझता था, कौन स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझते थे, लेकिन और कोई नहीं समझता था। लेकिन रूप गोस्वामी ने देखे कि बड़े सावधान से खड़ा होकर सुने क्या गा रहे हैं महाप्रभु, क्या गा रहे हैं बार बार, ये श्लोक क्यों गा रहे हैं, तो ऐसा ही सांसारिक गीत जैसे सुनाई पड़ता है बाहर से, यह कौमार हरस एव ही बरसता एव चैत्र कृपा स्तचो उन्मीलित मालवी मालती सौर भयो प्रौढ़ा कदम्बा नीला सचैवास्मि तथापि अत्र सुरतव्या परा लीला विधौ रेबा रोधसी बेतसी तरु तले चेत समुत्कंठते। ये साहित्य दर्पण की एक संस्कृत क्या व्याकरण किताब है, व्याकरण किताब से श्लोक है, तो वो श्लोक को क्यों पढ़ रहे हैं इसको समझ में नहीं आ रहा था किसको, लेकिन इसका अर्थ है कि वो मेरे कौमार अवस्था अर्थात मेरे यौवन अवस्था के प्रारंभ से जो प्रेमिक मेरे मन को हरण कर लिया था उसी प्रेमी कभी मेरे साथ में है, वही चैत्र महीना अर्थात बसंत ऋतु की प्रारंभ से वो मंद जो धीर समीर वायु बह रहा है मालती तथा कदम पुष्प की गंध को लेते हुए बह रहा है, मैं वही प्रेमिका हूँ और वो मेरे प्रेमिक में मेरे पास में उपस्थित है, हम चाहते तो सूरत लीला में इसको हम उपभोग कर सकते, लेकिन मेरी मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। मेरी मन कहाँ जाने चाहता है? रेबा नदी के किनारे, वो बेतसी तरु के बेतसी वृक्ष की कुंज की नीचे जाने की इच्छा प्रकट कर रही है। तो इसका अर्थ क्या? किसी को बाहर का लोग समझ में नहीं आते, कोई ऐसा ही कोई साधारण प्रेमिका अपने प्रेमिके को प्राप्त करने की इच्छा या प्रेमिके के साथ में किसी विशेष कुंज में लीलाओं को आस्वादन करने के लिए चाहता है, ऐसे ही प्रकट कर। लेकिन रूप को समय ने समझ गए महाप्रभु ने किस लिए गाते इसको है। तो उन्होंने गए उस दिन जाकर शाम को जो वापस गए हरिदास ठाकुर के वहाँ पर पास में कुटिया में एक कागज ले लिए, कागज लेकर उसको नहीं कागज तो नहीं था भोजपत्र, उसमें लिख कर उसको चाल में उनके जो कुटिया के चाल में छप्पर में ऐसे रख दिए, रखकर समुद्र स्नान के लिए चले गए। उसका अर्थ क्या है इसको स्पष्ट रूप में दूसरा श्लोक लेकर वहाँ रख दिए। गौरांग महाप्रभु बाद में अपने सपार्षद जा पर पहुँचे और महाप्रभु सब जानते थे अंतर जी में, वो चाल से वो छप्पर से उसको निकाल लिए कागज को, उसको पढ़े हैं, बोले ये हरिदास ये कौन लिखा है इसको? तो बोले अभी तो इधर कोई नहीं है, रूपा रहता था, रूपा कुछ ऐसे लिख रहा था, लिख कर वहीं पर रखा, रखकर चला गया समुद्र में स्नान करने। हैं क्या लिखा? महाप्रभु ने जोर जोर से पढ़े, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता हमसा राधा तदीय उभय संगम सुखम तथापि अंतस्खलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनम कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। हैं रथ यात्रा उत्सव की क्या रहस्य, उसको उद्घाटन कर दिए कौन? रूप गोस्वामी। महाप्रभु नृत्य करते गीत क्यों गाते हैं वहां पर? हरे कृष्ण मंत्र न गाकर ये पद क्यों गा रहे हैं? अर्थात उनके मन में क्या भावना था? रूप गोस्वामी व्यक्त की कि गौरांग महाप्रभु क्या सोचते थे, वो अपने को राधा रानी भाव को आस्वादन कर रहे थे, स्वयं को राधा सोचते थे कौन? गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ कृष्ण बैठे हुए रथ के ऊपर। इसलिए जगन्नाथ जी के सामने अपने भाव को व्यक्त करते थे कि ये पुरी के जो बड़े दांड है इसको कुरुक्षेत्र समझते थे कौन? महाप्रभु। कुरुक्षेत्र में जैसे द्वारका से सूर्य ग्रहण की अवसर पर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा पधारे थे कुरुक्षेत्र में और गोपियां लोग ने उस रथ को खींच कर ले आना चाहते थे कहाँ? वृंदावन में। उसी भावधारा को अंगीकार करते हुए ये राधारानी उनके लीडर थे और महाप्रभु ने उसी भाव को आस्वादन करते सोचते थे कि ये रथ के ऊपर जो जगन्नाथ बैठे हुए हैं, ये जगन्नाथपुरी के जो ये विशाल जो रास्ता है पूरी मंदिर से लेकर मासी मंदिर बा गुंडीचा मंदिर तक जो रास्ता, उसको क्या सोचते थे महाप्रभु? ये है कुरुक्षेत्र की मार्ग। और रथ के ऊपर वही बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, कौन बैठे हुए? कृष्ण बैठे हुए और स्वयं को राधारानी सोचते हुए, सारे पार्षदों को गोपियां समझते हुए, ब्रजवासी समझते हुए महाप्रभु करते कि रथ को खींच रहे थे कि ले जाएंगे कृष्ण को, कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन ले जाएंगे। हैं कहते कि मैं वही, क्योंकि ये वही कृष्ण बैठा है रथ के ऊपर और मैं वही राधा हूं, वही प्रेमिक वही प्रेमिका है और उभय संगम सुख, यदि चाहता था मैं उभय फिर संगम सुख परस्पर में मिलकर सुख लूट सकता लुटा मैं लूट वही संगम सुख को लूट सकते हैं, लेकिन मेरे मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। मैं ऐसे चाहता हूं कि इनको ले जाऊंगा कहाँ? वृंदावन की जमुना के किनारे, कालिंदी पुलिन विपिन स्पृहयति, वो कालिंदी के किनारे जमुना किनारे वही विशेष कुंज में लेकर इनको स्थाप माने कृष्ण के साथ में मैं विहार करूंगी। कृष्ण वहीं कुंज में बैठकर जब अपने मुरली को पंचम स्वर में जब इसको बजाएंगे, उसी मुरली स्वर को सुनने की मैं विशेष लालायती हूँ कौन? राधारानी। तो इसी भावधारा को कौन व्यक्त किया? इसीलिए वो चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु की मन की अभिष्ट क्या है, गौरांग महाप्रभु की मन में क्या चल रहा है, क्या प्लान बना, क्या सोच रहे हैं, इसको समझने के लिए अधिकारी कौन है? रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसीलिए रूप गोस्वामी इस श्लोक को जब लेकर चले गए थे, महाप्रभु ने पढ़ रहे थे उस समय रूप गोस्वामी वापस आ गए समुद्र से स्नान करके आए। महाप्रभु ने बड़े स्नेह में इनके गाल में एक थप्पड़ लगाया, बोले तुमको कौन बोला इसको श्लोक लिखने के लिए, कौन लिखा है ये इसको? रूप गोस्वामी बड़े हैं स्वरूप दामोदर को बोलाकर महाप्रूप गोस्वामी ने महाप्रभु ने कहा कि ये रूप कैसे मेरे मनोभाव को समझ गया? आपके अला दूसरे कहीं तीसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी नहीं था इसको समझने के लिए, मैं जो श्लोक किसी लिए गाता था नाचता था इसको ये रूप कैसा समझ गया? तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहे कि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपने इसको कृपा की है। किनको? रूप गोस्वामी कृपा की, नहीं तो आपकी कृपा के बिना आपकी हृदय की भावना को कौन समझ सकता है? आपने इसको विशेष कृपा की। तो महाप्रभु ने कहे कि हाँ, ये पहले मुझे अपने छोटा भाई अनुपम के साथ में मिला था, कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो मना कि हमने इलाहाबाद में संगम में, त्रिवेणी संगम में मिला था, और योग्य पात्र देखकर मेरी कृपा हुआ इनको, मैंने इसको शक्ति संचार करके ही इस गौड़ीय वैष्णव दर्शन को इनके हृदय में स्थापना किया हूँ, भक्ति ग्रंथ को प्रणयन करने के लिए इनको विशेष शक्ति प्रदान किया हूँ। तो बोले, आप ही तो सब कुछ किए, फिर पूछते क्यों? और इनको आपने शक्ति दिया तो इन्होंने आपकी मनोभाव को व्यक्त करती हैं। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी हमारे जो परंपरा में विशेष भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर महाप्रभु ने उनको फिर वापस वृंदावन भेज दिया, बोले कि जाओ, तुम्हारा बहुत काम बाकी है, कहाँ वृंदावन में कुछ काम नहीं किया, वहाँ पर जाकर तुम पहले लुप्त थे, तुमको उद्धार करो, विग्रहों को स्थापना करो, मंदिर निर्माण करना, भक्ति ग्रंथ प्रणयन करना, प्रचार करना, ये सब कार्य है, वापस जाओ। रूप गोस्वामी वृंदावन वापस आए, लेकिन विग्रह कैसे कहाँ से प्राप्त होंगे उनको पता नहीं था। शिव विग्रहों को स्थापना करने के लिए, पूजा अर्चना कर स्थापना करने के लिए महाप्रभु ने आदेश दिया। उन्होंने एक बार दुखी होकर जमुना के किनारे बैठे हुए थे, केसी घाट के आसपास बैठकर सोचते थे विग्रह कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो कोई विग्रह दिखाई नहीं पड़ रहे, घोर जंगल के अंदर में कहाँ विग्रह में मुझे प्राप्त होंगे। बड़े दुखी होकर महाप्रभु के आदेश कैसे पालन होगा बैठे थे। एक नवयुवक ग्वाला ने आकर लाठी पकड़ी हुई थी, बांसुरी अपने कमर में रखा, घूमते घूमते आया, बोला, बाबा क्या हुआ, इतने चिंतन क्या कर रहे हो, क्या दुखी क्यों, क्या बात है? बोले कि महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिया था, लेकिन लुप्त विग्रह मुझे कहाँ प्राप्त होंगे, लुप्त विग्रहों को फिर उद्धार करना। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये पास में ये जो गोमा टीला दिख रहा है, ये टीला के ऊपर एक गाय प्रत्येक दिन आता है और खड़ा होकर क्या करता, खड़ा होते उसके स्तन से अपने आप दूध निकालते रहता, कई बकेट दूध उसे पूरे स्थान को भिगा कर फिर वो कहीं चले जाती है गाय। आप देखो ना, आपकी इच्छा कुछ हो सकता है उसमें, कुछ है कुछ रहस्य हो सकता। कहकर वो फिर अंतर्ध्यान हो गया, कौन, उस ग्वाला ने। तो रूप गोस्वामी समझ गए कहाँ गए वो ग्वाला, समझ गए कि ये तो कोई विशेष साधारण ग्वाला नहीं था। दुखी होकर उनको अनुसरण गए, वो तो उनको मिला नहीं, लेकिन वो गए उस स्थान पर जाकर अन्वेषण किए और मार्ग किए कि प्रत्येक दिन मध्यान्ह में कौन आता है, गाय आता है, खड़ा होता तो उसके स्तन से दूध निकलते जाता है, स्थान पूरा भिगा कर दूध में चले जाता है। तो रूप गोस्वामी समझ गए, इसी के नीचे अंतर ध्यान कर उन्होंने ध्यानस्थ होकर अंतकरण में ध्यान में देखे कि इसी के नीचे ही कौन निवास करते हैं, गोविंद देव निवास कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को इकाठी करके फिर उन्होंने मिट्टी का नीचे से गोविंद देव को प्रकट कराए और इस खबर भेज दिए, कहाँ, गौरांग महाप्रभु के पास है, श्रील राधा गोविंद देव की जय। तो गोविंद देव को प्रकट करके उन्होंने खबर चैतन्य महाप्रभु के पास भेज दिया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और गोविंद देव की सेवा के लिए उन्होंने अपने जो दो सेवक थे, गोविंद दूसरे थे काशीश्वर मिश्र, दोनों ईश्वरपुरी के शिष्य थे। काशीश्वर मिश्र को कहे कि काशीश्वर तुम जाओ, रूप को मदद करो, किसकी सेवा करने में, गोविंद देव प्रकट हो गए उनकी सेवा करने में, जाओ मदद करो। लेकिन वो आना नहीं चाहते थे, इसलिए महाप्रभु ने एक विग्रह विजय गोविंद विग्रह जो कि जगन्नाथ जी के पास में ही विग्रह थे, कृष्ण विग्रह, उनको उठाकर लेके आए काशी मिश्र के माध्यम से, सर्वभौमों के माध्यम से उठा के लाए और इनको दिए। कही काशीश्वर, ये जो विग्रह देख रहे हो इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मेरे साथ में रहना और इनके साथ में रहना कोई फर्क नहीं है, इस विग्रह को तुम साथ में लेकर जाओ, इनमें से तुम मुझे साक्षात दर्शन करो पाओगे और इनको लेकर तुम जाओ ब्रज में। तो काशीश्वर उस विग्रह को लेकर आए, आज भी वो विग्रह गोविंद देव के पास में उनके अर्च विग्रह के रूप में विजय गोविंद विग्रह निवास करते हैं। तभी रूप गोस्वामी गोविंद देव को प्रकट कराएं और उनके पास में पहले राधारानी नहीं थे, बाद में राधारानी कहाँ से आए, पुरी से, प्रतापरुद्र महाराज प्रतापरुद्र के पितर पुत्र थे पुरुषोत्तम देव जब गजपति राजा बने तो उन्होंने एक राधारानी की विग्रह, वो बहुत रहस्य है, तो लेकर राधारानी के विग्रह को लेकर प्रतिष्ठित किए थे जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्र बढ़ावे। तो एक दिन वो राधारानी वो जो वो विग्रह को सब लोग क्या सोचते थे, लक्ष्मी जी की विग्रह है, लक्ष्मी विग्रह सोचकर उनको लक्ष्मी के रूप में सब पूजा करते थे। लेकिन वो विग्रह एक दिन स्वप्न में आया पुरुषोत्तम देव को, कहे कि तुम मुझे लेके आए हो राधा, मैं क्या, तुम जानते हो मैं राधारानी की विग्रह हूँ, बृहद भानु मुझे सेवा करता था, बात्सल्य रूप से मेरी पुत्र पुत्री के रूप में मुझे पूजा करता था, तुम लाकर मुझे रख दिया, लेकिन तुम तो बताया नहीं दूसरों को कि मैं राधा हूँ, ये सारे लोग मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर पूजा करते, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं राधा हूं, और मेरे प्राणनाथ प्रकट हो गए हैं, कौन, गोविंद देव, अभी मुझे भेजो वहां पर। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कौन, पुरुषोत्तम आश्चर्यचकित हो गया, दूसरे दिन आकर माफी मांगे राधारानी के विग्रह, फिर बड़े प्रशासन के साथ बहुत ठाट बाट में राधारानी को भेज दिए। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से वृंदावन। इस प्रकार राधारानी आकर गोविंद देव के पास में प्रतिष्ठित हो गए और राधा गोविंद के सेवा पूजा चलते रहा। दिव्या वृंदारण्य कल्प द्रमाधव श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्थ श्रीमत राधा शिलो गोविंद देव पृष्ठ्याली भी सव्यमान स्मरामी। सखी सखी दो सखी भी आ गए साथ में, पृष्ठ्याली भी, कौन सखी? ललिता विशाखा आदि सखियों की साथ में पूजा प्राप्त करने लगे। और महाप्रभु के आदेश को लेकर रूप गोस्वामी ने बहुत कई भक्ति ग्रंथों की प्रणय करने लगे। हंसदूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म विधि, जन्मतिथि विधि, बृहद राधा कृष्ण गणदेश दीपिका, लघु गणदेश दीपिका, स्तवमाला, विदग्ध माधव ललित माधव नाटक, दानकली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और आदि, मथुरा महात्म्य, पद्यावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत आदि कई ग्रंथ जो कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी ने अपने लघु तोषणी टीका भागवत की प्रति टीका लिखते उसी में प्रारंभ से रूप गोस्वामी की रचनाओं की भी लिस्ट दिए हैं। तो रूप गोस्वामी विशेष रूप में भक्ति के आचार्य के रूप में माने जाते हैं और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में इन्होंने सबसे अग्र पूज्या है। कौन? रूप गोस्वामी, क्योंकि स्वयं रूपमंजरी है। और इनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, कई दिनों तक चले, क्योंकि समय हो गया। घड़ी कितना टाइम हो गया? 9:20 हो गया। तो ऑलरेडी तो आपका समय काल सुबह एकादशी, आप लोग फास्टिंग भी तोड़ोगे। तो रूप गोस्वामी के बारे में कई कहानियां हैं। रूप गोस्वामी ने किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापना किए हैं, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी जो लिखे हैं उसको भगवान स्वीकार की, जो लिखे उसमें कोई गलती नहीं है। सनातन कभी कभी एक बार सोचे थे कि रूप गोस्वामी ये क्या लिखा है, राधारानी की बेणी को सांप की नागिनी के साथ तुलना कर रही है, लेकिन साक्षात उनको दर्शन हुआ है। राधारानी ने दर्शन दिए उनको, देखे कि सनातन गोस्वामी देखे कि राधारानी की जो बेणी है साक्षात नागिनी की तरफ हिल रही है, डोल रही है, झूला में बैठा कर सखी हुए उनको राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में कदम वृक्ष में झूला में झूला रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी देखे कि ये रूप ने जो लिखा है इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी के मन में एक बार इच्छा हुआ था कि इनको खिलाएंगे स्वीट राइस, किन को? सनातन को। ऐसा कहानी आप जानते हो, टेर कदम में किस प्रकार राधारानी ने स्वयं आकर कुकिंग करके चले गई। तो इस प्रकार ये राधा कृष्ण की अत्यंत प्रिय सहचरी जो स्वयं रूपमंजरी के रूप में राधा कृष्ण की लीला में थे, अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में किस रूप में प्रकट हुए? रूप गोस्वामी के रूप में। आज उनकी तिरुभाव तिथि है, श्रावण शुक्ल द्वादशी तिथि, और उनकी समाधि आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध दावा दामोदर मंदिर में ही उनकी प्रसिद्ध समाधि है। जिसको समय है तो जाकर उनकी विशेष कृपा के लिए उनकी समाधि में अवश्य पधारें, उनके कृपा की याचना करें। और आज राधा रानी के साथ में और विशेष अंतरंग सेवक जो भगवान श्री कृष्ण के जितनी भी सखाएं उनमें सबसे प्रिय सखा भगवान की कौन है? सुबल, जो कि कभी कभी राधा रानी की भेष भी धारण करती थी। राधा रानी कभी कभी उसकी भेष धारण करते थे, किसके? सुबल के। कभी कृष्ण को मिलाने, कृष्ण के साथ में राधा रानी के मिलन कराने के लिए उनके ससुराल जावट गांव में सुबल जी ने जाकर कभी कभी कुछ ना बहाना करके उनके अंतरंग कमरे में प्रवेश कर जाते थे और राधा रानी सुबल की ड्रेस को पहन लेती थी। सुबल राधारानी सुबल को ड्रेस पहनकर बाहर निकाल कर आकर कृष्ण के पास में आ जाते थे और सुबल राधारानी की ड्रेस पहनकर वहां पर रहते थे, क्योंकि देखने में दोनों एक ही प्रकार होते हैं, सारूप्य मुक्ति जैसे कहते हैं कृष्ण के साथ में, ऐसे ही सुबल की जो चेहरा राधारानी के चेहरा में पूरा मिलता जुलता है। राधारानी की राधारानी के साथ में उनकी सारूप्य मुक्ति जैसे थी, किसको? सुबल को। इसलिए सुबल जो साड़ी पहन लेती तो राधारानी के साथ सामंजस्य दिखाई पड़ता है, उसको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए सुबल सखा कृष्ण के सखा में जो सबसे अंतरंग सखा माने जाते हैं, जो राधा कृष्ण को मिलन करने में एक ही सखी के समान कार्य करते थे, कौन? सुबल। तो वही सुबल सखा गौरांग महाप्रभु की लीला में किस रूप में प्रकट हुए थे? गौरीदास पंडित के रूप में। और प्रारंभ से इनकी जन्म तो वहां पर हुआ था सालग्राम, जो कि नवद्वीप के पास में एक गाँव है सालग्राम, वहां पर उनकी जन्म हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने आकर अंबिका कलना, आज जो कलना है अंबिका कलना में जहाँ ठाकुरबाड़ी कहते हैं, वहाँ पर आकर रहने लगे। ये सुबल जो प्रिय श्रेष्ठ स गौरीदास पंडित, ये सुबल सखा ही गौरीदास पंडित रूप में प्रकट हुए। उनके पिताजी नाम था कंसारी मिश्रा, माता कमला देवी, और उनकी पत्नी विमला देवी थे, उनके दो पुत्र भी थे बलराम और रघुनाथ। और इस प्रकार उनकी कथा भी आप जानते हो, किस प्रकार एक बार गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब वापस जा रहे थे राम रामकेली से, तो उनके एक इच्छा हुआ कि हमारा प्रिय सखा गौरीदास को भी थोड़ा मिलकर चलते हैं। इसलिए गौरी दोनों गौरीताएं और सभी को अलग करके दोनों विशेष रूप में आए और हरि नदी गांव के पास में गंगा देखे कि गंगा के किनारे एक बोट बंधा हुआ है, कोई है नहीं ना चलाने वाला। दोनों बैठ गए गौरनीता है और नाव को चलाया कौन, स्वयं गौरांग महाप्रभु नाव चलाकर दूसरे पार में आ गए और जाकर गौरीदास का घर के आसपास में एक इमली पेड़ के नीचे बैठकर खबर दे दी कि आ गए हम, पहुंच गए दोनों। गौरीदास पंडित जाकर गौरनीता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके चरण कमल को पकड़ते हुए रोते रहे। कई दिनों की बात उनके दर्शन हुआ और प्रत्येक दिन उनको अपने घर में बहुत सुंदर पकवान बनाकर खाना बनाकर खिलाता था। 6-7 दिन रहे, तब गौरनीता कहे कि अभी तो प्रचार में जाना है। जब गौरनीता कहे महाप्रभु कहे कि अभी जाना है गौरीदास हमें और आगे चलना है, प्रचार में जाना है अभी, फिर बाद में कभी आएंगे। गौरीदास कहा कि आप चले जाओगे, ये नहीं चलेगा, मैं आपको यहां से एक पेड़ आगे बढ़ने नहीं दूंगा, चले जाओगे तो मैं शरीर त्याग दूंगा। महाप्रभु ने कहे कि देख नीता, ये असंभव नहीं, हम चले जाएंगे तो ये शरीर त्याग सकता है कौन, गौरीदास। अभी क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे कैसे, तो सलाह लेकर फिर महाप्रभु ने कहे कि देखो मेरा और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो वह कहकर महाप्रभु ने ठीक गौरनीता है दोनों खड़े हुए, उनकी एक ठीक एग्जैक्ट विग्रह उसी हाइट में और ऐसे ही एग्जैक्ट विग्रह गौरनीता का दूसरे बनाया, नीम के पेड़ उनके घर के सामने था, उसको कटाकर बनवा दिए। कहे कि देखो गौरीदास, ये विग्रह में हमारा कोई फर्क नहीं है, तुम ही विग्रह को तुम्हारे घर में रहेंगे, हम जा रहे। बोले विग्रह में आपके कोई फर्क नहीं, तो विग्रह ही जाने दो, आप रहो इधर। तो महाप्रभु ने कहे कि तुम प्रमाण मैंने विश्वास नहीं हो रहा, देखो तुम कुकिंग करके लाओ, चारों खाएंगे एक साथ। और कुकिंग करके सब प्रसाद लिया, चारों बैठकर देख रहे थे कि विग्रह भी खा रहे, ये भी खा रहे, दो चारों साथ में। बड़ा घबर गया, इसमें कौन गौरनीता है कौन विग्रह, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर बात तो महाप्रभु ने कहे कि बात में देखो, तुम दो सेट को किसी भी दोनों को रख सकते, चारों को तो नहीं रख सकते, चाहे दो रख लो और दोनों जाएंगे। तो बार बार बेचारे परेशान हो गया, गौरनीता कौन विग्रह है पहचानने में परेशान हो गया। अब बात में लास्ट में रह गए कौन, रह गए विग्रह, रह गए गौरनीता, निकाल गए। वो देख रहा था दर्जे में खड़ा कर, एक गौरनीता अपने अल्टर में खड़े हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और दो एक गौरनीता जा रहे गंगा के किनारे। तो बड़ा घावर, लेकिन विश्वास हो गया कि गौरनीता मेरे अल्टर में रहते हैं, रह गए हैं। तो इसी प्रकार गौरनीता आज भी वहाँ पर विराजमान है। इसलिए कहते कि जो साक्षात रूप में गौरनीता को देखने हैं, देखे नहीं है और देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, जाकर कल्ला में गौरीदास पंडित के घर में गौरनीता को दर्शन कर लो। एग्जैक्ट रूप है, ऐसे ही रूप थे। तो इसलिए उस गौरनीता वहाँ पर विराजमान है और ये प्रत्येक दिन इनको 56 भोग खिलाते थे, कुकिंग करके खिलाते रहे। एक दिन इनको इच्छा हुआ कि ये गौरनीता बहुत अच्छा स्वर्ण हीरा लीला मती माणिक के अलंकार के साथ में रहना चाहिए, सिंहासन स्वर्ण सिंहासन होना चाहिए, ऐसे ही कैसा मैं इनको ठीक से रख नहीं पा और चिंतन करता था। दूसरा दिन में जब अल्टर में प्रवेश किया, देखा कि वैसे लकड़ी का सिंहासन नहीं था, किसका सिंहासन था, सोने का सिंहासन के ऊपर हीरा लीला मोती माणिक के अलंकार धारण करके ही खड़े हैं कौन, गौरनीता है। बोले अरे ये कहाँ से, कौन इनको सब दे दिया, इसको सिंहासन स्वर्ण कैसा बन गया, कौन ऐसा दिया। तो सोचे कि दोनों हंसने लगे, बोले कि तुम्हारा जैसे इच्छा, हमें इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन तुमको पता है कि हमें ऐसे स्वर्ण अलंकार को पसंद नहीं करते, हमें तो जंगल में रहने वाले, तुम भूल गए तुम कौन हो, तुम सुबल सखा हो, हम कृष्ण बलराम है, जमुना किनारे में कितने सुंदर फूल पुष्प की सज्जा में, पुष्प और पत्र की सज्जा में तुम हमको डेकोरेशन करता था, कितनी वन्य भोजन होता था, तुम सब भूल गए। ये कहकर तुरंत ही गौरनीता क्या बन गए, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम सुबल सखा। ये गौरीदास पंडित इनको देखकर मूर्छित हो गए, कृष्ण बलराम गौरनीता को किस रूप में देखे, कृष्ण बलराम के रूप में इनको दर्शन दिए। अब फिर दोबारा जब उठकर देख रहे थे, फिर गौरनीता खड़े हैं, लेकिन इस समय और स्वर्ण सिंहासन नहीं कि हीरा लीला मोती माणिक नहीं है। गौरनीता कहेगी तुम हमको अपने हाथ में माला बनाकर पहना दो, उसी से हम बड़े खुश रहेंगे। हस्त में बना हुआ फूलों की माला, पत्ते में वृंदावन भेष में हमको सजा दो। फिर गौरीदास बड़े खुश होकर ऐसे वन्य पुष्प पुष्प माला बनाकर उनको पहनाया और कई प्रकार के पकवान बनाकर इनको खिलाते रहते। लेकिन एक दिन गौरनीता ने कही कि जब भोग लाकर ये सामने रख दिया, बहुत प्रकार के भोग, गौरनीता खाए नहीं, डेली खाते थे भोग, लगे बोले खाओ आ गया प्रसाद, दोनों बैठकर खाते थे कौन, तो उस दिन नहीं खा रहे थे। बोले क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहे हो, बोले तो कई प्रकार के उन्होंने भी नहीं की, खाओ कुछ गलती रह गया तो माफ कर दो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे थे, तो बैठ गए, तो वो भी उठ गए, ये क्यों नहीं खा रहे, नहीं खा रहे, मैं भी नहीं खाऊंगा, उपास रहूंगा, बैठ गए। तो फिर गौरनीता कहने लगे कि देखो तुम इतने वृद्ध हो गए हो, इतने परिश्रम करके क्यों इतने 56 भोग डेली बना, तो जरूरत नहीं है, एक दो सब्जी और बस अन्न दे दो, हम लोग खा के प्रसन्न हो जाएंगे। बोले यही बात है। बोला ठीक है, काल से और नहीं बनाऊंगा। फिर साग और सब्जी बनाकर बस भोग लगाते रहे। कौन? गौरीदास। अरे गौरीदास के साथ वो विग्रह के सोच साक्षात बाहर आते थे, जहां पर संकीर्तन होता था तो वे बाहर निकल जाते थे। आप सुने वो कहानी पहले से, किस प्रकार हृदय चैतन्य उनके शिष्य थे, गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदय चैतन्य। और एक बार गौर पूर्णिमा महोत्सव पर ये कहीं बाहर चले गए थे, इसके पहले किसी शिष्यों की मिलने के लिए गौरीदास पंडित बाहर चले गए थे, ये सेवा करते थे हृदय चैतन्य। 3 दिन रह गया, गुरु वापस नहीं आ रहे, तो उन्होंने कुछ इन्विटेशन लेटर दूसरों को बांट दिया गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए। तभी जब ये आए तो उसी दिन रात को वापस आ गए गौरीदास पंडित। ऐसे ही तो अंतकरण में खुश रहे कि गौर पूर्णिमा उत्सव को मनाने के लिए शिष्य ने इतने प्रयास किया, लेकिन बाहर में थोड़ा क्रोध दिखाए, कहे कि तुम मेरे को बिना पूछ के मेरे गुरु होते होते तुम अपना इतने बड़े मालिक बन गए हो, बाद में क्या करोगे पता नहीं, यहाँ पर गौर पूर्णिमा उत्सव नहीं मनाया जाएगा, तुम इन्विटेशन दिया था तुम जाके दूसरे के ही बनाओ। इसलिए उन्होंने जाकर फिर गंगा के किनारे उत्सव मना रहे थे, और एक सेठ जी ने बहुत पैसा धन उत्सव के लिए दे दिया। उत्सव मना रहे थे तो महासंकीर्तन हो रहा था, हजार हजार लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। यहाँ पर गौर पूर्णिमा भी, गौरीदास पंडित भी अपने मंदिर में गौर पूर्णिमा मना रहे थे। वो वहाँ पर भी कई प्रकार के भोग लाकर अंदर में जो भोग लगाने के लिए गए तो देखे कि सिंहासन में है नहीं। कौन? गौरीदास पंडित समझ गए, एक लाठी पकड़े ऊपर छत के ऊपर जाके देख रहे थे कि गौर नित्य नाच रहे वहाँ कहाँ कीर्तन के बीच में। बोले अच्छा वहाँ नृत्य करोगे, मैं जो 56 भोग बनाएगा इतने परिश्रम करी बनाए, वहाँ जाके नाचना शुरू, आ रहा हूँ मैं। लाठी लेकर आ गए, तो इसलिए दंडा लेकर आएगा तो महाप्रभु ने कहे कि निताय देखो आ गए, अभी क्या करेंगे। हैं नित्यानंद तो बहुत नटखट है, भाग गए वो कहीं निकल गए, लेकिन महाप्रभु ने जाने पे एकदम देखिए सामने आ गए। कौन? तो देखते देखते महाप्रभु सूक्ष्म रूप धारण करके उनके शिष्य हृदय चैतन्य के हृदय में प्रवेश कर गए। ये देख रहा था कौन? गौरीदास। गौरीदास के सारे क्रोध समाप्त हो गया, अपने शिष्य को आलिंगन कह आलिंगन किए हृदय चैतन्य को, क्या आप चैतन्य दास नाम था पहले, तुम धन्य हो, मेरे सामने ही गौरांग महाप्रभु तुम्हारी हृदय में आश्रय लिए है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रहेगा हृदय चैतन्य। धन्य धन्य, तुम सारे कीर्तन को पार्टी को लेकर चलो मंदिर में ही, वहीं उत्सव मनाओ। हैं सभी लोग को लेकर आए कीर्तन में, कीर्तन पार्टी को लेकर आ गए मंदिर में, और अल्टर में जाके देख रहे गौर नित्य फिर खड़े है, मुस्कुरा रहे हैं, खाना खा प्रारंभ कर दिए खाना। कौन? गौर नित्य। इसलिए तब से ये विधि है कि वो मंदिर में कोई जाता है तो गौर नित्य को किसी प्रेमी भक्त को दर्शन कराने नहीं जाते, तो भाग जाते कभी कभी। एक ही घटना, ऐसे कई घटना है, वहाँ का पुजारी कहते कि एक ही बार नहीं, ऐसे कई बार घटना हुई है, ये भाग जाते हैं अंदर में, अंदर से निकाल कर। कौन? गौर नित्य। यदि कहीं बाहर में कीर्तन फिर्तन चलता है अच्छा से, भक्त नाचते गाते वो कल्टर में नहीं रहते, भाग जाते उधर कीर्तन में। हैं तो इसलिए प्रथा रखे हैं सही बंद, हैं मैंने 2 सेकंड से ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं, बंद कर देगा अल्टर, जैसे बांकी बहर में चलाते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही ये चलते रहता है। तो इस प्रकार कई लड़ाएँ हैं उस स्थान पर संगठित हुआ है, समय अभाव से आपको संख्या में बता दिए, कभी गौरीदास पंडित की फिर आविर्भाव होगा तो आप डिटेल सुनोगे। हरे कृष्ण। शिला रूप गोस्वामी तिरोभा महामहोत्सव की शिला गौरी।